आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
करीब 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने सरकार की उच्च शिक्षा ऋण योजना हेल्प यानी हायर एजुकेशन लोन प्रोग्राम के जरिए शिक्षा ऋण लिया है। आप भी इस योजना का पात्र हो सकते हैं और अपनी उच्च शिक्षा की फीस को नौकरी लगने तक के लिए स्थगित कर सकते हैं। किसी भी उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेते समय आपको अपनी पढ़ाई के शुल्क चुकाने के प्रबंध करने होंगे। कुछ छात्र कर्ज से बचने के लिए अपने कोर्स की फीस पूरी भर देते हैं, लेकिन अधिकांश लोग सरकारी ऋण से शिक्षा के शुल्क को पूरा करते हैं। सरकार की इस ऋण व्यवस्था को हायर एजुकेशन लोन प्रोग्राम या हेल्प कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 5 प्रकार की हेल्प योजना उपलब्ध हैं, जिनमें हेक्स हेल्प यानी HECS हेल्प और फी हेल्प सबसे अधिक प्रचलित हैं। शिक्षा विभाग प्रवक्ता स्टेफनी स्टॉकवेल का कहना है कि हेक्स हेल्प ऋण के लिए पात्र को कॉमनवेल्थ सपोर्टेड प्लेस यानी CSP में नामांकित होना अनिवार्य है। वे समझाती हैं।
A Commonwealth supported place known as a CSP, this is where a student enrolls at a university and the government pays a subsidy directly to the university, so the overall cost of the course for the student is reduced. However, a student would still need to cover some of the cost of the course, and that's where a help loan becomes important because if they're eligible, then they could take out a help loan to cover that remaining amount.
इस बाकी के खर्चे को हेक्स हेल्प भर देगा, लेकिन आपके रहने के और दूसरे खर्चों को आपको संभालना होगा। सुश्री स्टॉकवेल बताती हैं कि आप हेक्स हेल्प या दूसरे विकल्प यानी फी हेल्प के लिए पात्र हैं या नहीं, ये आपके पढ़ने के संस्थान पर निर्भर करेगा।
You would apply for one or the other depending on your enrollment. They both help a student pay for a higher education course. But a HEX help loan can be used where you're enrolled in the CSP, and a fee help loan can be used if you're enrolled in a full fee paying place, which is a non-subsidized place at a university in Australia.
HEX help और fee help का सबसे बड़ा फायदा ये है कि छात्रों को तुरंत पूरे कोर्स की फीस नहीं भरनी पड़ती। हालांकि सभी छात्र एक कॉमनवेल्थ सपोर्टेड प्लेस में पढ़ने या हेल्प ऋण के लिए पात्र हों, ये जरूरी नहीं है। यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया की कार्यकारी मुख्य सचिव रेनी हिंडमार्श का कहना है कि इस योजना का पात्र होने के लिए आपके पास विशिष्ट वीजा या निवासी दर्जा या नागरिकता होना आवश्यक है। वे समझाती हैं।
So this includes Australian citizens with plans to study at least some of their course in Australia, and in terms of visa holders, current or eligible former New Zealand special category visa holders who meet long-term residency requirements and commit to studying their entire course in Australia are eligible. Permanent or eligible former humanitarian visa holders who will be living in Australia during the duration of their course are eligible too. As well as Pacific engagement visa holders.
विदेशी विशेषज्ञ खास फी हेल्प किसी ब्रिजिंग कोर्स के लिए ले सकते हैं, चाहे आप फुल टाइम पढ़ें या पार्ट टाइम। फीस कोर्स के हर यूनिट के आधार पर लागू की जाती है, सालाना आधार पर नहीं। जितने अधिक यूनिट आप पढ़ेंगे, उतनी ही फीस आपके हेल्प ऋण में जुड़ती जाएगी। ब्रूस चैपमैन ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर एमेरिटस हैं। वे मूल हेक्स व्यवस्था के शिल्पकार भी हैं। वे इस व्यवस्था को समझाते हुए कहते हैं।
So if you enroll in a degree, you might do 4 units in first semester, and each of those units will cost a certain sum of money, and you incur a debt, which is the total of all of them. So 1 year, to illustrate, might cost you $3,000. But if the next year you only take one course, then your debt would only increase by about, $500 or something.
जितने अधिक यूनिट आप पढ़ेंगे उतनी ही फीस आपके हेल्प ऋण में जुड़ती जाएगी। आपका ऋण तब तक यथावत रहता है जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती। जब आपके नियोक्ता आपकी तनख्वाह में से इनकम टैक्स काटेंगे तब वे आपके हेक्स के नाम की भी थोड़ी रकम काट लेंगे, पर यह तभी होता है जब आपकी सालाना तनख्वाह एक स्तर पर पहुंच जाती है। मौजूदा समय में ये स्तर सालाना $51,550 पर तय है, जिस पर आपकी कमाई पर अतिरिक्त 1% का टैक्स तब तक लगाया जाता है जब तक आप पूरा ऋण ना चुका दें। प्रोफेसर चैपमैन समझाते हैं कि हेल्प व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऋण से किस तरह अलग है।
Currently that level is $52,000 a year, and then you'll pay a percentage of your income to repay the debt. It starts at 1%. So, for example, if you've got a debt for $30,000, which would be not uncommon, and you don't start working in a job until 5 years later, nothing happens at all. When you earn $52,000, 1%, which is $520, will be taken off your debt until the debt's gone.
चूंकि हेल्प ऋण आपकी कमाई पर निर्भर है और हर किसी की कमाई अलग होती है, तो हर किसी का हेल्प ऋण भार भी अलग होगा और उसको चुकाने का तरीका भी उनका अपना होगा। प्रोफेसर चैपमैन समझाते हैं कि इस तरह से हेल्प ऋण बैंक के ऋण से अलग होते हैं, जहां ऋणी को तय समय में ही पूरा ऋण चुकाना होता है।
बैंक लोन एवरीबॉडी हैज टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ एंड इट्स इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स एंड इट्स ऑल वेरी क्लियर हाउ लॉन्ग इट टेक्स विद हेक्स डेट सम पीपल विल रीपे इफ दे हैव गॉट वेरी हाई इनकम्स इन अबाउट 5 इयर्स एंड सम पीपल वोंट पे until they leave the labour force. So it's very, very diverse. But the median time to repay an average kind of debt would be about 10 years.
पर तब क्या होगा जब आप देश से बाहर रहने लग जाएं? आपका ऋण आपके देश बदलने से माफ नहीं हो जाता। सरकार आपसे फिर भी इस ऋण को वापस लेगी ही।
If you go overseas for some period, it's not a short-term thing, it's not a holiday. You're required by law to make a statement, which is an official record of what you earned wherever you were, and then the HECS rules would apply and you owe that amount of money in the same way as if you're an Australian.
इस ऋण की भी अपनी सीमाएं हैं। इन्हें सरकार की स्टडी असिस्ट वेबसाइट पर जाकर समझा जा सकता है। हालांकि आपको ऋण तब तक नहीं चुकाना शुरू करना होता जब तक आपकी आय तय स्तर तक ना पहुंच जाए, फिर भी आपका ऋण समय के साथ बढ़ सकता है। स्टेफनी स्टॉकविल चेताती हैं कि ये ऋण कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित है और इसी के अनुसार हर साल ये ऋण बदलता भी है।
This is to keep up with changes in the cost of living, and it means that a help debt can grow over time. And the rate of indexation that is applied to a debt changes each year as it's based on the consumer price index.
प्रोफेसर चैपमैन समझाते हैं कि हेल्प व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऋण से किस तरह अलग है। अगर लोग किसी समस्या में हैं, या उनकी नौकरी चली गई है, या वे बीमार हैं, या वे किसी उम्रदराज अभिभावक की अथवा नवजात शिशु की देखभाल कर रहे हैं, तो उन्हें इस ऋण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार वित्तीय स्थिति सुधरने पर उनसे ये ऋण बाद में वापस ले लेती है।
If people are in trouble, they lose their job, or they're ill, or they're looking after an aged parent or a newborn child, they don't have to worry about repaying because the government will collect it later if their financial circumstances improve.
Universities Australia की कार्यकारी मुख्य सचिव रेनी हिंदमार्श के अनुसार आपको ऋण सहायता के लिए अपने कोर्स के दौरान केवल एक बार आवेदन करना होता है। योग्य छात्र हेक्स हेल्प फॉर्म के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
Eligible students will be required to submit a request for HECS help form, which is provided by their university. And within this form, they'll need things like a tax file number or confirmation of an application for a tax file number, as well as their unique student identifier.
सरकारी सहायता और उच्च शिक्षा वित्तीय सहायता पर अधिक जानकारी के लिए स्टडी असिस्ट वेबसाइट पर जाएं। SBS न्यूज से मेलिसा कॉम्पनोनी द्वारा बनाए गए ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को आपके लिए SBS हिंदी से प्रस्तुत किया है वृषाली जैन ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।